شرک اصغر کے مسائل، الشرک الاصغر، اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. ابھی تک جو باتیں ہم پڑھ رہے تھے نا، تو ہمیں یہ لگ رہا تھا یہ ہماری باتیں نہیں ہیں. اچھا یہ مکہ والوں کی ہیں، یہ مدینہ والوں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں فلاں کی، لیکن اب وہ باتیں ہیں جو بہت کامنلی لوگ کرتے ہیں لیکن اس کو شرک نہیں سمجھتے. پہلی بات، نظر بد یا بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے چھلہ، چھلہ یہ جو شاید انگلی میں انگوٹھی جو ڈالتے ہیں، منکا، کڑا، زنجیر، حلقہ یا تعویذ پہننا شرک ہے. دوسری بات، نظر بد یا حادثات سے بچنے کے لیے کار، مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال، نال لگانا، نال کہتے ہیں جوتے کو، یہ جو گھوڑے کے نیچے سم کے نیچے ایک سٹیل کا کچھ ڈالا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، یا مٹی کی کالی ہنڈیاں لٹکانا شرک ہے. بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ ایسا کام کرتے ہوں گے. نوزائیدہ بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے گھر کے دروازے پر کسی مخصوص درخت کی ٹہنیاں لٹکانا شرک ہے. حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے بازو پر امام ضامن باندھنا شرک ہے. ان سب باتوں کی دلیل میں حدیث ہے عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک جماعت اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئی. نبی اکرم نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور دسویں آدمی کی بیعت لینے سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت لی ہے، اس آدمی کی بیعت کیوں نہیں لی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کس نے تمیمہ، تمیمہ یعنی تعویذ، دھاگا یا منکا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تمیمہ لٹکایا ہوا ہے. چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس سے بیعت لے لی. پھر ارشاد فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اسے احمد نے روایت کیا. اگلی روایت اس سے اور بات واضح ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا دم، تعویذ اور ٹونے شرک ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور نیچے سب روایتوں کے آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں، سلسلہ حدیث و صحیحہ للالبانی، یعنی یہ صحیح روایتیں، اس میں سے کوئی بھی روایت ضعیف درجے کی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگلی بات، ابو بشیر الانصاری سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے. آپ نے ایک پیغام رساں بھیجا. عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگ ابھی اپنی خواب گاہوں میں ہوں گے، یعنی صبح کا وقت تھا، اور حکم دیا کہ کسی اونٹ کے گلے میں دم کیا ہوا دھاگا، یعنی تانت، دھاگے کا کلادہ، پٹا یا کوئی تاک توک نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مشرک لوگ یہ توک اونٹ کو نظر بد سے بچانے کے لیے استعمال کرتے تھے. روایت صحیح مسلم کی ہے. یعنی انسانوں تو انسانوں، جانوروں کے گلے میں بھی اگر کوئی ایسی چیز لٹکا دی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر آتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ ٹاپک، مجھے پتہ ہے کہ سنتے وقت بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کو کیسے کریں. تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ ہے امام ضامن، مطلب کیا اس کا، کھولیے اس کی معنی کو ذرا. امام ضامن یعنی اس بندے کا ضامن، اس کی ضمانت دینے والا امام ہے، کہ اب امام صاحب کی حفاظت میں یہ آ گیا تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی حفاظت کرنے کی، اللہ تعالیٰ تو اپنی حفاظت اسے اٹھا لے گا. پھر دھاگا باندھا، کمزور دھاگا، یعنی وہ دھاگا جو کوئی اس کی طاقت نہیں، کچھ نہیں، آپ اس کو کالے رنگ کا باندھ کے بچوں کے بازو میں باندھ دیتے ہیں کہ اس کو نظر نہیں لگے گی. ذرا عقل سے بھی انسان سوچے، ایک دھاگا جو کاٹن سے بنا ہے، پولیسٹر سے بنا ہے، پتہ نہیں کتنی مشینوں سے گزرا ہے، وہ دھاگا آپ کو کیا دے دے گا؟ بعض دفعہ من کے، موتی، زنجیریں، حلقے، یعنی یہ جو تعویذوں کے نام پہ بھی جو لٹکائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ذرا صرف انسان عقل سے سوچے تو یہ تو بے جان چیزیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کیا؟ آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے بازو میں دھاگا پہنا ہوا، گلے میں منکوں کی ایک مالا پہنی ہوئی، اور آپ کے ہاتھ میں تعویذ تھے، لوگ آتے جاتے اور کہتے تعویذ دو. کتنے غم نہیں پہنچے اللہ کے نبی کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں ہوئی. کوئی ایک روایت، کوئی ضعیف روایت بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ عائشہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک تعویذ کر کے دیتا ہوں، اس کو پہنو، دیکھنا تمہارے اولاد ہو جائے گی. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہوئے، بیمار ہوا آپ کا بچہ، اپنی گود میں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے، اس کے گلے میں کوئی دھاگا نہیں باندھا، کوئی زنجیری نہیں باندھی، دین تو پیچھے سے چلا. ये सीरत की रोशनी में जब हम इन चीज़ों को सुन रहे हैं, आपके सामने किताबें रखी हुई हैं, खोल के पढ़ लें, कोई एक रिवायत आपको मिल जाए कि अल्लाह के नबी ने किसी को दी हो कि तुम्हारी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, जाओ ये फलां काम करो और उनके रिश्ते होंगे। हमारा दीन अमल वाला दीन है। हम जब अमल नहीं करते ना तो उसके शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। आप कहते हैं कि हिफाजत के लिए हम पहनते हैं, अल्लाह के नबी ने क्या हिफाजत के लिए और तरीके नहीं बताए? सुबह शाम की दुआएं, अकीदे की पुख्तगी, पाक और साफ रहना, तहारत का इहतमाम करना, ये सारी चीज़ें आप आज भी करें, इंशाल्लाह ना आपको बाबे नज़र आएंगे, ना आपको खौफ आएगा, ना आपको साए दिखेंगे। नज़रे बद की बात है, आप आयतुल कुर्सी पढ़िए। हर चीज़ का तोड़ इस्लाम में है। आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो हदीस में आता है कि आप उसको देखे को माशाल्लाह। किसी की कोई अच्छी नेमत देखो तो को बारकिल्ला या बारक अल्लाह, अल्लाह ताला बचा लेगा उसको नज़रे बद से। हम पहले काम सारे नाफरमानियों के करते हैं, हम वो चीज़ें करते हैं कि जिससे यानी शैतान हमारे करीब आ जाए और अल्लाह ताला के फरिश्ते रहमत के दूर हो जाएं, फिर हम उसके तोड़ करने लगते हैं। फलां बच्ची, इसको डर बड़ा लगता है, लेकिन हो सकता है उसका हुलिया ऐसा हो कि जो शैतानों को अपनी तरफ माइल करने वाला हो। तो जब हम सच्चे दीन पे अमल करते हैं ना, तो ये छोटे छोटे झूठे सहारे जो इनकी हमें ज़रूरत नहीं रहती। ये चैप्टर पूरा करूँ, फिर कोई सवाल हुआ तो आप ब्रेक में मेरे से कर सकते हैं इंशाल्लाह। बदशगुनी लेना शिर्क है। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद अल अंसारी सहाबी रसूल कहते हैं, जिस शख्स को बदशगुनी ने काम करने से रोक दिया, वो शिर्क का मुर्तकिब हुआ। कितना कॉमन है ये मर्ज़ आज हमारे यहाँ। बदशगुनी क्या होती है? मसलन रोटियाँ पकाते पकाते पेड़ा हाथ से गिर गया, तो शायद मेहमान आएंगे। कोई जा रहा था तो पीछे से आवाज़ दे दी किसी ने, बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब नहीं जाओ, ये काम नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने बदशगुनी की वजह से कोई काम करना छोड़ दिया तो उसने शिर्क किया। ज़रा
मैंने गिरा मैं हाथ में बस थोड़ा सा आटा जो ना वैसे पीछे से मतलब हाथ में से गिर गया था,
क्या करते हैं
थोड़ा
उससे?
सा आटा जो ना पेड़ में से तो वो थोड़ा सा निकल गया था इस तरह के
तो इसको भी शिर्क कहते हैं,
वो।
यानी इसको भी कहते हैं कि इससे क्या होता है। यानी आप देखिए कि ये जो
हाँ
बातें, काली बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मेरी एक दोस्त थी, तो वो दुनिया का एक बड़ा मशहूर मुल्क है, नाम नहीं लूँगी, वहाँ गई, यानी दुनिया के हर खित्ते में उनकी चीज़ें पहुँची हुई हैं, कि सबसे ज़्यादा चीज़ें वो हैं, दुनियावी तरक्की इतनी, सब कुछ, लेकिन इतना ज़बरदस्त शिर्क है वहाँ, इतने शगुन है, कहती हैं कि छोटी छोटी जगहों पे, यानी उन्होंने घरों के दरवाज़ों पे हड्डियाँ बांधी हुई हैं, कहीं खरगोश के कान बांधे हुए हैं, कहीं उन्होंने पत्ते बांधे हुए हैं, कहीं दरख्त, और हर एक के साथ एक नई कहानी, इससे ये होता है, इससे बलाएं टलती हैं, इससे ये होता है, इससे वो होता है। अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा आप अल्लाह के कलाम से जुड़ जाते हैं ना, इन चीज़ों के ऊपर आपका वैसे ही मामला वैसे नहीं रहता। जितने लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, आप ज़रा उनसे पूछें कि क्या आप कुरान पाक को समझते हैं, अपने मानों में, लफ्ज़ों में समझते हैं? अल्लाह ही जानता है कि वो कितना समझते होंगे। और उसके करीब कोई आए तो लोगों को खौफ आने लगता है कि अब ये शायद इस चीज़ से हटेगा। तो बहरहाल, अल्लाह ताला हमें सबसे भड़के और दूसरों को हमसे ज़्यादा हिदायत दे। अगला मसला देखते हैं कि गैर अल्लाह यानी वालदैन, बीवी, औलाद, कुरान या काबा वगैरह की कसम खाना शिर्क है। दलील है अब्दुल्ला बिन उमर से रज़ी अल्लाह अन्हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे की कसम खाई, उसने कुफर किया या शिर्क किया। और दूसरी दलील है सही मुस्लिम की हज़रत अबू हुरैरा से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से जो शख्स गैर अल्लाह की कसम खाए और अपनी कसम में यूं कहे कि लात की कसम, ये उस दौर का एक बुत था, लात की कसम, उसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहना चाहिए, यानी अपने ईमान की तजदीद करे, दोबारा कलमा पढ़े। और जो शख्स अपने साथी से कहे, आओ मैं तुझसे जुआ खेलूं, तो उसे अपनी इस्तेआत के मुताबिक सदका करना चाहिए ताकि गुनाह का कफ़ारा अदा हो सके। और सही मुस्लिम की रिवायत ऑथेंटिक रिवायत होती है। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये ज़यीफ़ होगी, क्योंकि सही बुखारी और मुस्लिम का लफ्ज़ जहाँ आ जाएगा, आप पूरे शऊर से उसको मान सकते हैं कि ये रिवायत सही है, कोई इसमें शुबा नहीं है। कितनी आम बात है, बेटे की कसम, दूध की कसम, पूत की कसम, फुलां के सर की कसम, नहीं खानी चाहिए। अल्लाह की कसम खाई जा सकती है, अल्लाह की सिफात की कसम खाई जा सकती है, लेकिन मखलूक की कसम नहीं खाई जा सकती। फिर रिया और दिखावा शिर्क है। दलील है इसकी, अबू सईद रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं, हम लोग मसीह दज्जाल का जिक्र कर रहे थे, इतने में रसूल अकरम तशरीफ़ लाए और आपने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जिसका मुझे तुम्हारे बारे में मसीह दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा डर है। हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ज़रूर बतलाइए। आपने फरमाया, शिरके खफी, वो ये है कि एक आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है और सिर्फ इसलिए उम्दा नमाज पढ़ता है कि इसे कोई दूसरा शख्स देख रहा है। रिवायत है इब्ने माजा की, यानी दूसरों के सामने ज़्यादा अच्छे तरीके से नमाज पढ़ना। इसी तरह तरके नमाज शिर्क और कुफर है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, कुफर और शिर्क और बंदे के दरमियान तरके नमाज का फ़र्क है, यानी मुसलमान नमाज पढ़ता है और काफिर नमाज नहीं पढ़ता। इस मेयार पे ज़रा आप दोबारा मुसलमानों की लिस्टें बना लें। आज हम बड़े आराम से कहते हैं ना कि दुनिया में कितने मुसलमान हैं, किसी को अंदाज़ा है इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद कितनी है? कोई लास्ट किसी ने सुनी हो बात? अच्छा, 4 मिलियन है या इसी, कुछ बहुत बड़ा फिगर है। अब ज़रा उसमें से आप छांटिए नमाज़ पढ़ने वाले जो 5 वक्त पढ़े, 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, वो कितने हैं? बस आप इस हदीस की रोशनी में उनको दोबारा रिसॉर्ट कीजिए। ये हैं सही वाकई और ये हैं सिर्फ नाम के। गैब का हाल मालूम करने के लिए किसी को हाथ दिखाना शिर्क है। हज़रत सफ़िया रदी अल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा मुहतरमा से रिवायत करती हैं कि आपने फ़रमाया, जो शख्स नजूमी के पास जाए और उससे मुस्तकबिल के बारे में कोई बात दरियाफ्त करे तो इसकी 40 रोज़ की नमाज कबूल नहीं होती। सितारों की तासीर पर यकीन रखना शिर्क है। दलील है इसकी हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, नहीं नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने बरकत आसमान से, मगर लोगों में से बास ने सुबह को इसका इनकार किया, हालांकि बारिश अल्लाह ताला ही बरसाता है, लेकिन इनकार करने वाले कहते हैं कि फ़लां फ़लां तारे की वजह से बारिश हुई। यानी ये कहना उस दौर का रिवाज था और उनका अकीदा था कि बारिश ये सितारों के असर से होती है। कहा कि नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से होती है, जो ये कहेगा फ़लां सितारा खुश हुआ और उसने बारिश बरसा दी तो उसने शिर्क किया। और आखिरी बात इस बाब की कि अंबिया औलिया और सुलहा से अकीदत में गलूफ करना शिर्क है। दलील है इसकी सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, मेरी तारीफ़ में इस तरह मुबालगा न करो जिस तरह ईसाइयों ने हज़रत ईसा के बारे में मुबालगा किया, बेशक मैं एक बंदा हूँ, लिहाजा मुझे अल्लाह ताला का बंदा और इसका रसूल ही कहो। अब आप देखिए कि इसमें जितनी चीज़ें आ गई हैं, हम सबके सामने एक मेयार है, चेक लिस्टें बना लें। एक एक चैप्टर को दोबारा दोहराई करते वक्त खोल के देखते जाएं और अपने अकीदे का इजहार करें, देखें कहाँ क्या कमी है। देखिए, लाइल्मी की वजह से या दूसरों के मतलब बताने से बाज़ दफ़ा वाकई इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी होती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। कल तक जो था वो था, इल्म नहीं था, और इल्म आ गया तो अल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि पिछला माफ़ कर देगा, बल्कि जब हम अपनी इसलाह कर लेते हैं तो आइंदा के लिए अल्लाह ताला फिर हमें तौफीक भी दे देता है कि हम हमारे पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। आखिरी जो चैप्टर है ये आप ख़ुद ही पढ़ लीजिएगा, अहादीस दईफ़त वल मौदुआ, ज़ईफ़ और मौजू रिवायात, यानी ये ऐसी बातें जो लोगों में आम होती हैं। और आप इस चैप्टर को पढ़ते हुए नोट करेंगे कि यही हैं वो रिवायतें जो उन तफसीरों में लिखी होती हैं जो लोग शिर्क को प्रमोट करते हैं। जब भी मैंने जुमला एक बोला था ना कि लोग भी तो कुरान पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं इसके ऊपर सोचते कि ये शिर्क है, ये मन ऐसी रिवायतें हैं जिसके अंदर कोई ज़ोफ़ है और इसके अंदर ख़राबी है, और अखबारों में अमूमन आपको ऐसी रिवायतें ही मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने ईमान की इसलाह करें और अपने अकीदे को देखें। हक तो दा नहीं हुआ, लेकिन एक क्विक सा इस किताब का रिव्यू हुआ है आप लोगों के पास, इंशाल्लाह ताला इस वीकेंड पे जो टाइम होगा उसमें इस किताब को डिटेल से देखिएगा, दोबारा पढ़ें। आप पहले शुरू में नहीं थे और ये इतनी दिलचस्प किताब है, पढ़ें, पढ़ते हुए जो चीज़ें जहन में आएँ, कुछ सवाल उठें, उसको लिखते जाएं। इंशाल्लाह हम आपको इस कमिंग मंडे को फिर एक असाइनमेंट देंगे, हल्का सा एक, बिल्कुल वो एक ऐसा असाइनमेंट है कि जो वाकई आपके लिए एक चेकलिस्ट ही बन जाएगी कि उसके रोशनी में आप अपने अकीदे को देखेंगे, तो इंशाल्लाह वो असाइनमेंट फिर आपसे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन टेस्ट तो नहीं लेकिन असाइनमेंट आपको इसका करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि उससे आप लोग ज़रूर इसको अपने अपने अमल के नाते से बहुत कुछ देखेंगे। अल्लाह ताला तौफीक दे और हमारी ख़ताओं को माफ़ करे, और कोई ऐसी बात हमें कहने की सुनने की तौफीक ना दे कि जो हक़ से हटी हुई हो। और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते या उसको ये महसूस करते हैं कि ये किसी और इंसान के अफकार हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में भी डाल दे। हमने तो हुज्जत पूरी करनी है, इंशाल्लाह पूरी करते ही जाएंगे, लेकिन हिदायत देना तो अल्लाह का काम है। अगर हम सिर्फ़ इस वक्त अपनी फ़िक्र करके अपने आप को संवार लें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत होगी। जी ये लिखती हैं कि जो सुपरस्टिशियस यानी ये जो बदशगुनियाँ होती हैं, तो कहती हैं कि ग्लास ब्रेक्स इट्स नॉट गुड फॉर फैमिली, यानी ग्लास टूट जाए तो कहते हैं फैमिली के लिए अच्छा नहीं। अच्छा तो वाकई नहीं है, किसी के पाँव में किरची लग सकती है, तो सही तो नहीं हो सकता ना। लेकिन इसको अगर आप किसी और रंग में लें तो अल्लाह जानता है। ये लिखते हैं कि इफ़ समवन गेस्ट कमिंग टू योर हाउस एंड वी ब्रिंग न्यू थिंग्स टू डेकोरेट आवर हाउस, इज़ इट शिर्क और नॉट? नहीं, देखिए मेहमान की इज़्ज़त करना तो अच्छी बात है, लेकिन अब उसके लिए पहले ही सारी चीज़ें उठा के रख दें और नया सामान ख़रीद लें और वो कहे वाह ये कितनी अमीर है, इससे आपको कितना को फ़ायदा होगा? अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छा घर बनाना, अच्छे घर को सजाना, अगर आप अपने दिल की खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने ज़ौक की तस्कीन के लिए कर रहे हैं, तो हर्ज नहीं है। लेकिन जब वो एक्सट्रीम पे हो जाए कि वो सिर्फ़ अपने आप को ठोकर लगती रहे सारा दिन उस वॉज से और उस गुलदान से, लेकिन आप कहेंगे नहीं यहाँ पड़ा वो खूबसूरत बहुत लग रहा है, तो वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है,
सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।